राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 मई 1993 दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण।
गीता जी के 13वें अध्याय में प्रकृति के विभिन्न तत्वों का वर्णन करते हुए भगवान ने जिस एक तत्व को महतत्व नाम से बताया है, कठोपनिषद के एक उदाहरण में उसे महानात्मा कहा है, जबकि आत्मा प्रकृति से परे है। तो ये दोनों में कैसे मतलब फर्क है? ये
महानात्मा महतत्व का नाम है, आत्मा नहीं हो। जो कठोपनिषद में इंद्रिय परार्थार्थे व्यक्ष परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर बुद्धिरात्मा परान महान पर पुरुषा परा गति। यहाँ जो महान आत्मा पर बताया है वो महतत्व का वाचक है। महतत्व मन बड़ा भारी तत्व, तो बड़ा भारी तत्व बुद्धि है समष्टि, और समष्टि बुद्धि का नाम है महान आत्मा पर। और महत्ता परम अव्यक्तम, ये अव्यक्त प्रकृति का वाचक है। अव्यक्तार्थ पुरुषा पर है, उससे आत्मा को है। और पुरुषार्थ न परा किंतु साकाष्ठा परा करती है, उस परमात्म तत्व से पर उसके श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। वही परामृति आखिरी अद्भुत सूक्ष्म कहा है। तो वह आत्मा महान आत्मा बताया, महान आत्मा ना महतत्व का है, समष्टि बुद्धि का है। उसको ही ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा की बुद्धि, उसको ही महतत्व कहते हैं। उस महतत्व से पर प्रकृति है, प्रकृति से पर पुरुष है। प्रकृति महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त में से अव्यक्त नाम दिया, यहाँ इसमें अव्यक्त दिया है नाम। ये अव्यक्त प्रकृति का वाचक भी है और महत्व वाचक भी है। जैसे अव्यक्त सर्वा प्रभव में अव्यक्त से प्रकृति संपूर्ण में होते हैं। अव्यक्त आदि भूतानी व्यक्त ध्यान अव्यक्त भूतानी, यही भी अव्यक्त शब्द आया है। अव्यक्त व्यक्ति मापन मनंती माम बुद्धि परम भाव बनान तुम मम भूत महेश माँ वहां भी अव्यक्त आया है। तो अव्यक्त नाम आत्माध्याय में जहाँ वर्ण है ना वहाँ बनते अव्यक्त समय है। तो ये अव्यक्त ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर का नाम, ये ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर का नाम अव्यक्त है। और अव्यक्त उस दे अगर जो प्रकृति उस प्रकृति का नाम सूक्ष्म शरीर कारण सा रहे हैं ब्रह्मा जी कारण से ये नाम अव्यक्त है। तो अव्यक्त पर सनातन अव्यक्त परमात्मा वाचक है, वो अव्यक्त प्रकृति वाचक है। तस्मात् भावनो अव्यक्त 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 पर, तो वो अव्यक्त परमात्मा है। परम पुरुष सह परमार्थ है, वो भी परम पुरुष परमात्मा है, भक्ता लब्धस्त है, अन्य भक्ति से लब्ध है। तो वो आत्मा परमात्मा का वचन नहीं है, अव्यक्त है, से महान आत्मा से परे अव्यक्त है, व्यक्त अव्यक्त से परे परमात्मा है, परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है, ये कठोर समय ये आया है। फिर पढ़ लेना, ठीक पढ़ कर फिर विचार करना पड़े, ऐसे कोई सोचे से बड़ा बढ़िया सोचा, मत ऐसा दिया है यहाँ, ऐसा दिया है, आप क्या कहते हैं। तो मैं बड़ा आनंद आता है कि खुशी पढ़ते तो है, मेरी बात भी समझते तो है, लेकिन प्रश्न फूला फूला प्रश्न आता है, कभी आया तो गर्म था, बढ़िया समझता हूँ मैं, जब साधन का आवे साधन के विषय में मेरे से पूछे उसके प्रश्न तो वो बहुत बढ़िया लगता है। हाँ आप पूछ लो
प्रश्न, गीता तत्व जो पढ़ता है वहाँ सेठ जी निराकार रूप से सुनते हैं, पर सुनने में आता है ये बात सत्य है क्या?
अब इस बात में मेरे को क्या पता भाई, अब कोई पढ़ता है कोई सुनता है, मेरे को समाचार पूछे मैं कैसे बताऊँ, सबका समाचार हमारा पास आता नहीं, सबका समाचार छोड़ जाते मेरे पास।
इसी प्रकार साध संजीवनी जो पढ़ता है वहाँ स्वामी जी महाराज सुनते हैं क्या निराकार रूप से?
मैं नहीं सुनता भाई, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो तत्व साधु सुनने नहीं पढ़ते हैं, वो मेरे को अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, ये बात मैं कर रहा हूँ। मैं वहां कहाँ रहता हूँ, मैं शेर जी तो अब तक सब जगह होते भी एक जगह विशेषता से होते हैं, शरीर जब नहीं रहता है तो सब जगह सामान्य रूप से हो रहते हैं, जैसे परमात्मा सब जगह है तो परमात्मा के साथ एकता तो सब जगह वो रहते हैं, तो जहाँ कृष्ण जी पढ़ते हैं वहाँ श्रेष्ठ जी है कोई आस नहीं करती, पर मेरे को पता नहीं है सब बिल्कुल। अब कहते जो साधु से नहीं पढ़े स्वामी जी जाते हैं, तुम्हें नहीं जाता हूँ भाई, मैं तो अपने यहीं जाता हूँ। मेरे को स्वप्न की बात सुनाते हैं तो स्वप्न में ऐसा हुआ, तो भाई मेरे को तो पता नहीं, मेरे को स्वप्न आया नहीं, मैं कैसे कर दू क्या, वो सपने में ऐसे मिले थे, ऐसे बात हुई थी, ऐसे बात हुई थी, वही होगा। मैं तो कहता हूँ सपना है ये संजार है, ऐसे झूठा आ जाता है, कभी कभी सपना आता है वो भविष्य का सूचक भी होता है, भविष्य काल में ऐसा होने वाला है, ऐसे जैसे शकुन होते हैं इसलिए आ जाता है। स्वप्न उनको आवे मेरे को ही आवे से के साथ में, वो तो कहते मैं सुनते मैं को हाँ में अब तुम्हें सुनती तो उसमें मैं मानू, मेरे को आता ही नहीं सुनना उस बात में कैसे मानू, आप बताओ स्वप्न उसको आया कि मैं सुना कैसे मानू। स्वप्न सृष्टि अपने आप की होती, दूसरे की नहीं होती, अपने स्वयं की सृष्टि होती है। वेदांत वर्ण आया ना, जैसे सांप होता है सृष्टि में, सांप की सृष्टि होती है, सांप पैदा होता है, कैसे विवेचन आया है, इसलिए से स्वप्न सृष्टि होती है, और स्वप्न सृष्टि का अभिन्न होता है आप ही होता है। जैसे अभी बैठे बैठे ध्यान दो ये बात समझने के लिए, अभी हम हरिद्वार को याद करें तो हरिद्वार का प्लेटफॉर्म है, विजय घंटा लगे, गंगा जी बह रही है, मछलियों में तैर रही है, कहीं स्नान कर रहे हैं, अभी जो ऐसा करते हैं अब याद आता है, वो याद आता है वो आपके मन की कल्पना है, नहीं तो आप कहते स्नान कर ले जाकर अभी देखे तो वे स्नान करते आदमी नहीं मिलेंगे, आप अभी देखे घाट पर स्नान करते हैं पुरुष ला रहे तो आपके मन की वो बात मिलेगी नहीं वहां, क्योंकि आपके मन की सृष्टि है, तो मन के सिवाय कुछ नहीं है, केवल मन ही मन है, इसलिए से परमात्मा की सृष्टि है, ये परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा में सिवाय कुछ नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोतम मत परतरम नान्य किंच मई सर्वमिदं प्रोतम, उसमें ये उस प्रोत है, तो ये परमात्मा का स्वरूप है, वासुदेव सर्वमिति परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा इसमें कोई ऐसी भावना रखे भावना करे तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, ये बहुत सीधी बात आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही सीधी बढ़िया बात है, बड़ी जोर से देखे कि परमात्मा है परमात्मा है, एकांत विचार में होंगे परमात्मा है, शेर जी ने तत्व चिंतामणि चौथे भाग में बात लिखी है, उसमें आया है, ध्यान दे के सुने, वो साधकों के काम की बड़ी बात है कि साधक को चाहिए एकांत में जाकर बैठ जाए और बैठकर विचार करे कि मैं जब भगवान को याद करता हूँ तो मेरे मन में जो आता है वो भगवान का स्वरूप ही होता है और जब मैं भगवान का चिंतन करता हूँ तो मेरा मन जाता है जहाँ भगवान ही है। तो मेरे मन में गाय याद आ गई, गंगा जी याद आ गई, पत्थर याद आ गया, तो मैं भगवान जी भगवान का ये रूप है, क्योंकि मेरा उद्देश्य भगवान के चिंतन करने का है, तो जो चिंतन होता है वो भगवान का है और मेरा मन भगवान को छोड़ के जाता ही नहीं। चाहे गाय याद आ जाए, चाहे गधा याद आ जाए, चाहे नदी याद आ जाए, पहाड़ याद आ जाए, तो समझना चाहिए ये भगवान है साक्षात। गधा है, कुत्ता है, सूर है, ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, ये भगवान है साक्षात, स्वयं परमात्मा इस रूप से है। ये सिद्धांत की बहुत बढ़िया बात, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तत्व चिंता नहीं चौथे भाग माया, देख कर लावा भी याद नहीं है, तो ऐसा आया है, आप थोड़ा और मैं बता सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया साधन है, अगर परमात्मा तत्व को आप पाना चाहते हैं तो इसका आप अनुष्ठान करें, इसका अनुभव करके देखें। मेरे मन में जो आएगा वही भगवान का स्वरूप आएगा और मेरा मन जहां जाएगा वो भगवान का स्वरूप होगा। जो आ जाए सोई भगवान है, जो आ जाए सोई भगवान है, मन में आ जाए भगवान है, मन चल चल जा जाए जाए वही भगवान है, जो दी सोई भगवान है, भगवान है, भगवान है। आपके अगर लगन होती करके देखो, मेरी प्रार्थना है मेरे कहने से करो, बहुत लाभ की बात है। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में
लेख का कोई नाम याद है
क्या? पुस्तक लाओ बाबू, तत्व चिंतामणि चौथा भाग। बहुत ही बढ़िया चीज है, आप भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका भी सार चीज है, सार ऐसी चीज। एकांत बार जो कुछ चिंतन मत करो, अब जो आ गए वो भगवान का स्वरूप, कुछ आ गया निवेश कर लो भगवान है, निवेश भगवान, वृक्ष याद आ जाए तो भगवान है, निवेश करो, जो याद आ जाए भगवान, तो मन में आवे भगवान ही आएंगे और मेरा मन भगवान में ही जाएगा, जो चिंतन आए वो भगवान है, मेरा मन जहाँ गया वो भगवान का स्वरूप है। चाहे हरिद्वार याद आ जाए, बीकानेर याद आ जाए, कलकत्ता याद आ जाए, बम्बई याद आ जाए, ये भगवान, ओ भगवान कलकत्ता का रूप धारण किया है, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा, बम्बई का रूप धारण कर लिया, ये परमात्मा है, बहुत ही बढ़िया चीज है। जितनी महिमा गई जाए उतनी थोड़ी है, कर देने का
मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद 12 दिनों के अंदर श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करने से प्राणी की मुक्ति हो जाती है, ऐसा लोगों से सुना है।
ठीक है,
मेरा अपना भी विश्वास है।
बोलो चौथा बोलो, चौथा भाग होगा, छोटा दिखता है, परचे ठीक देखो, ये तत्व चिंतामणि सात भाग है, उसके कुछ छोटे छोटे लेख करके अनेक पुस्तकें बना दी, अब उन पुस्तकों का नाम मैं जानता नहीं, तो चौथे भाग में ही है।
इनमें कुछ लेख याद पूरी तो होने वाली है, आज
एक है चौथे भाग का खंड एक है, तो तीन खंड चौथा भाग किया। मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि संसार की जो भी वस्तुएं हैं दिखलाई देती हैं, उन सब में यह भाव करें कि भगवान ने ही ये सब रूप धारण रखे हैं। मन से कहे जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं जाओ, सब रूप तो भगवान के ही है, भगवान ने ही धारण कर रखे हैं। जो भी वस्तु तुम्हें दिखाई देती हो वे सब परमात्मा नारायण का ही रूप है। सारे संसार में सबको भगवान का स्वरूप समझकर मन ही मन भगवत बुद्धि से उन सबको प्रणाम करें। एक परमात्मा ने ही अनंत रूप धारण कर लिए हैं। इस प्रकार से अभ्यास से भी कल्याण हो जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में बहुत उपाय बतलाए गए हैं, जिसको जो सुगम मालूम हो उसको उसी का साधन करना चाहिए, क्योंकि उनमें से किसी भी एक का साधन करने की कल्याण हो सकता है।
यही बात
ठीक
है,
यही बात। अब दूसरी चीज बताओ, हमारे यही भी है। फिर सुना देखो, वृक्ष पत्थर पशु पक्षी इत्यादि संसार की जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, उन सब में यह भाव करें कि परमात्मा ने ही ये सब रूप धारण कर रखे हैं। और मन से कहें जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं जाओ, सब रूप तो भगवान ने ही धारण कर रखे हैं। जो भी वस्तुएं दिखलाई देती है वे सब परमात्मा नारायण का ही रूप है। सारे संसार में सबको भगवान का रूप समझकर मन ही मन भगवत बुद्धि से सबको प्रणाम करें। इस परमात्मा ने ही अनंत रूप धारण कर लिए हैं। इस प्रकार के अभ्यास से भी कल्याण हो जाता है। मेरे मन में वही आएगा जो भगवान का स्वरूप है। यह कल्याण प्राप्ति कई युक्त है, यही है लेख, यही लेख।
कल्याण प्राप्ति की युक्तियां शिष्य के लिए इसका मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद 12 दिनों के अंदर श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करने से प्राणी की मुक्ति हो जाती है।
देखो मुक्ति का पता नहीं, एक भाव है मरने वाले का गीता के प्रति कैसा भाव रहा है और पाठ करने वाले कैसे भाव से करते हैं, तो मुक्ति होने का पता नहीं। लाभ जरूर होगा इसमें संदेह नहीं, भाव की तारतम्यता रहने से कम ज्यादा लाभ होता है। लाभ करने की शक्ति सब साधनों में है, परंतु भाव के अनुसार होता है।
ये पाठ परिवार के सदस्य कर सकते हैं या किसी योग्य पंडित से कराना चाहिए?
पंडित से कराना इतनी लाभ की बात नहीं जितना सदस्य करे अपने परिवार का।
और टेप रिकॉर्ड पर लगा दे तो भी काम हो सकता है?
हो सकता है, वो इतना बढ़िया नहीं। जितने प्रेम से आदमी करे टेप रोड क्या करेगी, टेप रोड चाल राम 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 करके सुनने में अच्छा लगेगा, कोई कल्याण हो जाएगा। उसकी दुनिया में नहीं है। टेप रोड के भावों को समझो तो व्याख्यान का भाव को सुनो तो फिर कान याद आ जाएगा, इससे लाभ बहुत ज्यादा होता है। बहुत सुनी साधन कीर्तन है तो कीर्तन में आप साथ लग जाओ, टेबल लगाओ आप कीर्तन कर लग जाओ, बहुत लाभ होगा। भगवान नाम कीर्तन से कीर्तन तो सुनना और कहने मात्र से लाभदायक होता है।
और 12 दिन में रामायण का पाठ घरवाले कर सकते हैं या नहीं
कर सकते हैं? करते हैं, किया है, करेंगे। बम्बई में जीवन विहार एक स्थान है जिसमें बहुत आदमी रहते, कई परिवार रहते। उसमें हमारे दीयान जी रहते थे, उनका शरीर शांत हुआ तो सब परिवारों ने मिलकर के 12 दिनों के भीतर भी दवा पाठ कर दिया। ऐसे फिर कई जगह पाठ हुआ जिनका शरीर शांत हुआ 12 दिनों में। आज आए हुए आओ पाठ करो, और घर वाले सब पाठ करे, छह सात बेटा उनके बउआ पोता बिजा सब उनकी स्त्री साथ हुई, सब ऐसा किया। तो वो मेरे पास समाचार है, मैंने गई पाठ करो रामायण का, और उन घरों में ऐसे हुआ है 12 दिनों के भीतर पाठ किया। डालमिया रामकृष्ण जी जो जयदारी डालमिया के बड़े भाई थे, उनका शरीर शांत हुआ तो वहां मेरे जाने का काम पड़ा, उठे वाइन था मैं चला गया तो जाकर का पाठ करो, तो उन्होंने बात बनी भीतर पाठ किया रामायण का। बहुत बढ़िया चीज है, आवे रोवे रोवावे करे तो पाठ चलो कितनी बढ़िया, आवे जो पाठ करो बड़ी पाठ करो। बहुत ही बड़ी चीज है। मरने वाला कल्याण हो और पीछे रहने वाला कल्याण है, सबका महान हित है। इस बात के पाठ रामायण का जरूर करना चाहिए। शोक दूर हो जाएगा, शोक नष्ट हो जाएगा, चिंता मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा।
कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन तीनों को अपनाते हुए परमात्म तत्व प्राप्त कर सकते हैं क्या?
बिल्कुल, छोड़ा ना, ये भागवत में मेरा योगास्त्रयो में आप लोगों का दृढ़ सहयोग 20वां अध्याय में, 21वां 20वां अध्याय में ये तीन कल्याण करने के लिए मैंने योग कहे। और यहाँ तो कह दिया है नान्योपायो से गर्चित, अन्य उपाय कोई है ही नहीं।
उसका प्रश्न पूछे मालूम देता से है कि तीनों साथ में चलते हुए प्राप्ति कर सकते,
साथ में चलते हुए कर सकते हैं, साथ में एक कार्य नहीं कर सकते,
या एक को विशेष रूप से लेकर
एक को विशेष रूप करो और करें तो भारी, कभी ये कभी ये कभी ये करते भी ठीक है, बट एक को विशेषता से इष्ट मान कर करे और दूसरों का साथ गौण रूप से करे और गौण रूप से आ जाते हैं। एक ज्ञान योग का अनुष्ठान करोगे तो कर्म योग और भक्ति योग साथ में आ जाएंगे, एक भक्ति योग का अनुष्ठान करोगे तो कर्म योग ज्ञान योग आ जाएंगे, ऐसे कर्म योग का अनुष्ठान ठीक तरह से करोगे तो साथ में तीनों आ जाएंगे और तीनों का फल एक होगा, वो मिलेगा ही, ऐसे करो। एक समय में दो नहीं कर सकते। एक और बात बताऊं, ये जो कहते हैं कि भक्ति का साधन है ये द्वैत दृढ़ करता है, इस वास्ते अद्वैत सिद्धांत वालों को भक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रचार करते हैं। और अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथों में द्वैत मानने वालों की निंदा की है। मैं क्षमा मांगता हूं, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। मैं बचपन में अपने आप को देख पाऊं तो जब भक्ति से भगवान में मन ज्यादा लगता है तो निराकार का ध्यान बड़ा सुंदर से होता है, और निराकार का ध्यान बिल्कुल ध्यान ठीक होने पर भक्ति की बातें सुनो तो बड़ा असर होता है। तो एक एक सहायक है, बात नहीं है, ये मेरे पर असर है। अब मैं अनुभव स्वरूप कह दू जा अभिमान की बात है, मैं मानता हूँ इस बात को, मेरे ऐसी बात आई है जीवन बीती है, बहुत लाभ की बात है। किसी को भी जीता मानना वो बात है, वो बात ये स्वयं की अपनी बाधाई है। जो ऐसा मानते हैं कि भक्ति वालों को ज्ञान की बात सुननी नहीं चाहिए, ज्ञान योग कहते हैं द्वैतवाद योग सुनते भेदवादी माध्यम लिखते है लिखा है, गलती लिख दिया, माफ करना, क्षमा मांग लेता हूँ, गलती ठीक नहीं है। ऐसे मैं लोगों पर भी आजमाइश करके देखता हूँ, भागवत भक्ति की बात चलेगी उसके बाद ज्ञान की तात्विक बातें बड़ी सुगंध समझ में आ जाएगी, और तात्विक बातें ठीक होगी तो फिर भक्ति में प्रेम सच्चा पैदा हो जाएगा स्वाभाविक। ऐसा एक एक ये सहायक है, बाधक बाधक नहीं है। पंचदशी में ज्ञान का मार्ग है, वो ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति को भ्रम मानना है, भ्रम होता संवादिता है, भ्रम से संसार भ्रम से दिखता है, अध्ययन से दिखता है, ऐसे स्वरूप उपासना को भ्रम बताया पंचदशी में। और भ्रम दो तरह का होता है, संवादी और विसंवादी, तो संवादी भ्रम कहा है इसको। संवादी भ्रम क्या है तो भ्रम, पर उसके कारण से आगे चीज मिल जाती है। जैसे पर्वत में है एक मणि दिखती है, तो मणि दिखती है वो साक्षात मणि दिखती है, वो मणि क्या है कि मणि की आभा पड़ती है एक चमकने पत्थर पर, तो पत्थर में वो मणि दिखती है, तो वहां जाने से उसको देखते ही प्रकाश जिस रात वो मणि मिल जाती है तो भ्रम, परंतु इसका फल अच्छा होता है। ऐसे उपासना करनी भगवान को मानकर है तो भ्रम ही, जो संसार भ्रम है जो ही, परंतु इसका फल अच्छा होता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। पंचदशी भूलना है, हम भ्रम नहीं मानते, भ्रम उनका है वो लिखा है। भक्ति में देखी जाए तो गीता में देखा जाए तो जितनी भक्ति की महिमा है उसी किसी महिमा नहीं, इतनी अर्जुन जी ने 18वें अध्याय के आरंभ में संन्यास और त्याग के तत्व का प्रश्न किया है, तो सांख्य योग और कर्म योग, तो त्याग नाम कर्म योग, संन्यास मानो सांख्य योग, तो दोनों के भेद बताए। पहले 12 तक कर्म योग है, फिर 13 से 40 तक सांख्य योग है, 41 से 48 तक फिर कर्म योग है, और 49 से 55 तक सांख्य योग है, और 56 से 66 तक भक्ति योग है, जो अर्जुन पूछा नहीं था। 56 साल अर्जुन तो दो ही तत्व पूछा था, भक्ति योग का बड़ा ही मीठा प्रण है। अब साधक संजीवनी का 56 से 66 तक प्रखंड पढ़ कर देखो, 56 से 66 11 श्लोक भक्ति का वर्ण है, जो बहुत ही विषय है, बड़ा ही अलौकिक है। भंवरलाल जी है क्या? भंवरलाल जी आपके साथ मैं था, एक पंडित दो साधु थे, एक पंडित आए, गीता की बात मैंने कही तो गीता का विवेचन किया, तो पंडित ने रोमनल देश गीता व्याप्ता भावता संस्कृत वाले को, तो संस्कृत बात में हुई, तो वो तो हिंदी भी नहीं बोल सकते, वहाँ भाषा कौन सी है?
तो बीच में महाराज बीजापुर की बात है।
हाँ बीजापुर
अपने चापुड़िया जी का भागीदार है मोतड़ा जी।
हाँ
मोतड़ा जी
हाँ, तो ये ले गए थे वहाँ, तो मैंने हिंदी समझा नहीं, उनकी भाषा मैं समझू नहीं, तो गीता का विवेचन किया, तो एक पंडित इतने खुश हो गए, इतने खुश कि आप कहते हो रोम में गीता बैठी है, गीता आप शरीर में रोम रंध्र सुख आपका रोम रंध्र गई रो रो में भी करी है आपने कण कण गीता जी है, उसने 18 अध्याय विवेचन किया था। ये बड़े पंडित राजी हुए, कृष्ण को शरीर शांत हो गया, दो साधु से गुरु चेहरा बहुत अच्छी बात थी, वो हिंदी समझते भी थे, तो गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, गुणातीत ये लक्षण है, भगवत भक्ति लक्षण है, और स्थित प्रज्ञ लक्षण है, और स्थित प्रज्ञ लक्षण ये कर्मयोग से सिद्ध पुरुष का लक्षण है, 12वां अध्याय है उसमें जो सिद्ध पुरुष अभ्यसा लिखा है ये भक्ति योग से सिद्ध पुरुष का लक्षण है, और गुणातीत जो 14वां अध्याय में लिखा है वो ज्ञान योग से सिद्ध हुआ पुरुष का लक्षण है, परंतु गीता इन लक्षणों को बड़ा आदर बड़ी विशेषता समता का वर्ण देती है, पर गीता आप कहती है कि वासुदेव सर्वमिति सम महात्मा दुर्लभ है, सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो ये दुर्लभ है सब बता दिया कि सब परमात्मा है, तो आप ये बार मैंने तत्व चिंता की बात बताई, मन में जो याद आवे खुश हो ये भगवान का स्वरूप, वाह 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 भगवान का स्वरूप, ये भगवान का स्वरूप, और चिंतन आ जाए वो भगवान का स्वरूप, मन कहीं से आ जाए वो भगवान का स्वरूप है, ये तो साथ साथ वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, ये गुणातीत सिद्ध प्रज्ञ और भक्ति से ऐसे ऊंचा हो जाएगा, कम नहीं जाएगा, ऐसी बड़ी सी बात है, परंतु आप उस समय आप मानते हैं नहीं, मंगे आश्चर्य आवे है कि मेरे को आप ठग भी नहीं मानते और मेरे को खराब आदमी नहीं मानते, ये प्राय मेरे को छल नहीं मानते, धोखाबाज नहीं मानते, धोखाधड़ नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ करके देखो फिर, और इतने वर्षों से मैं आपके साथ हूँ, 60 वर्षों से किसी को धोखा दिया उस कोई बताओ अमुक को तो हमने धोखा दिया, उसके साथ तुमने विश्वासघात किया, उसका अनिष्ट किया तुमने, बताओ तो फिर आपके साथ अनिष्ट करूंगा अन्याय करूंगा, मैं बढ़िया से बढ़िया बात बताता हूँ, कृपा समझो थोड़ा उसका अनुष्ठान करके देखो, क्यों आदत ये भगवान ही भगवान है, भगवान है अनेक रूप रूपा है विष्णु में परमेश्वर में, कितनी बढ़िया बात है, अनेक रूप अनेक रूप से भगवान आप ही है, मैं इसका वर्णन किया है व्याख्यान दिया है ठीक तरह से, मेरे को बहुत विलक्षण बात अभी मथानी मास में मेरे को दृष्टान्त मिला है, बढ़िया बात मिली है, बड़ी प्रसन्नता हुई है, जीवन में कोई नई बात जैसी हुई है, ऐसी बात इतनी भक्ति की विलक्षण प्रधानता, आप करके देखो, आप जो करते हो साधन बंद मत करो, सब वही करते रहो, धोखा आपको नहीं होगा, मैं तो छोड़कर करो तो योगा नहीं है, तो मैं वो उपासना करते रहो, साथ साथ ही उपासना चलते फिरते भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, अनेक रूप रूप भगवान। अरे मत्स्य कूर्म बरा हंस, जो भगवान का मत्स्य कंस बरा निशंग आदि रूप भगवान के हैं अवतार। ऐसे हरिदस में लिखा है धरे अवतार 84 लख अलख 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 अलख, धरे अवतार 84 लख 84 लाख अवतार भगवान धारण किए। ये वृक्ष पौधा मनुष्य पशु जितने सबके सब भगवान के स्वरूप है, ये अवतार है भगवान के, धरे अवतार 84 लख अलख 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 अलख, सब भगवान का अवतार है। इस वास्ते भगवत बुद्धि से आप बात करो, गीता भागवत में बहुत है विशेषता से सुनिए। अयम ही सर्वकल्पा नाम सद्धि चीनो मतो मम, एकादश में लिखते हैं कि सब जितने के साधन है उनमें सबसे श्रेष्ठ साधन है मद्भाव सर्वभूतेषु, सब जगह मेरा भाव मनो वाक काय वृत्ति, मन से भी चिंतन करो, शरीर से भी सबकी सेवा करो, बर्ताव भी सबके साथ भगवत बुद्धि से करो, ऐसे करो करके देखो आप बहुत जल्द परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कई जगह आया भागवत में ये प्रश्न, सब परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है। संसार की रचना की तो भगवान एक ही, मैं बहुत रूप हो जाऊं ऐसे बना उन्होंने, मैंने कहा व्यक्ति कहीं से मंगाई नहीं, माल मंगाया नहीं, आप ये बन गए, वो पद सुनाया था नहीं, आप अकेले ही आप बन गए सब कुछ, प्रभु की लीला आगम अपार, कैसी विशेष बात है, प्रभु ने कृपा बन गया अपार, बन गए आप अकेले ही सब कुछ, अकेले ही बन गया स्त्री पुरुष बन गए, वृक्ष धूप घसे जल चर सर नव चर सब आकाश में उड़े जगह जल में रहने वाले जितने जंतु है, पृथ्वी पर फिरने वाले जंतु है, उनमें स्थावर है कि जंगम है, आप अकेले ही सब कुछ, अकेले ही बन गया स्त्री पुरुष बन गए वृक्ष धूप घसे जल चर सर नव चर सब आकाश में उड़े जगह जल में रहने वाले जितने जंतु है, पृथ्वी पर फिरने वाले जंतु है, उनमें स्थावर है कि जंगम है, सब परमात्मा स्वरूप है, बन गए आप अकेले ही सब कुछ, तो आप ही बने आप में लीन हो जाएंगे तो आपका भी स्वरूप हुआ। मिट्टी से पैदा होने वाले बर्तन मिट्टी से हुए, मिट्टी में ही रहे, मिट्टी नष्ट होकर अंत में मिट्टी बन जाएंगे, ऐसे परमात्मा से पैदा हुए परमात्मा में रहे अंत में परमात्मा में लीन हो जाएंगे, तो परमात्मा का स्वरूप है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, ऐसे चिंतन को आप बहुत लाभ की बात।
प्रश्न है जो तुलसीदास जी ने मस्तक नवाया भगवान ने छवि अपनी,
श्री राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जुग पानी, श्री राम मैं सब जग सब सीताराम 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 किया
बड़ी छवि बनी आपकी भले विराजे नाथ पुस्तक मस्तक न जब नवे धनुष बांध दो हाथ, और कित मुरली कित समझिका कित गोपियन को साथ अपने जने के कारण नाथ भय रघुनाथ, तो यो या विषय समझाओ तुलसीदास जी में जी क्या विलक्षणता थी।
तुलसीदास जी महाराज राम उपासक थे, राम जी की उपासना करते थे, पर राम जी की उपासना करते हुए भी किसी धर्म की किसी उपासना की निंदा नहीं की, किसी की काट छाट नहीं की, सब जगह हमारे राम जी ऐसे देखते थे, सिया राम में सब जगह जाने सब जगह सीताराम 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 सीताराम, तो सीताराम सीताराम भी करते हैं राम सीताराम से जान भरत चीर सरे पार कर चीर प्रवेश प्रयाग का राम से राम सी उमगी उमगी अनुराग राम सी राम सी राम सिया राम सिया राम सिया राम, तो सबको ऐसा मानते थे, ऐसे सब जगह चाहते थे, तो वृंदावन पहुंच गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वहां गए तो वहां कहते हैं क्या बात है, यहाँ राधे राधे रसक है आक ढाक सब कैर, तुलसी या ब्रजोग में कहा राम से बैर, राम राम करते ही नहीं सब राधे 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 राम से बैर है, ऐसे कहा उल्टा नहीं रानी रट में। तो भगवान के यहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर में पहुंचे तो महाराज ने नमस्कार किया। तो लोग कहते अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, इष्ट दुर्गुणा आदमी नमेशो मूर्ख हो। ऐसे कह दिया कि सब अपने अपने इष्ट को नमस्कार करते हैं। आपका इष्ट तो है राम, आप नमस्कार तो करे कृष्ण को, तो अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं सबको। इष्ट बहुना आदमी अष्ट हरे के नहीं नमस्कार करे तो मूर्ख है वो। गोस्वामी के बाद ठीक है भाई, तो आप कृष्ण करते हैं, कहा कृष्ण का नहीं करता हूँ। तो कहा वाह वाह, कहा कहूँ सभी आपके भले बिराजे नाथ, आप अच्छे बिराजे हो। तुलसी मस्तक चबरने में धनुष बाण लो, आप धनुष बाण लो। तो कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत सखी गोपी अनुकूल साथ, तुलसी जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ, रघुनाथ जी रूप धारण कर लिया। तो रघुनाथ जी का रूप धारण करने से पहले कहा तो नाथ ही कहा ना, वाह वाह आज तो बड़ी बड़ी सुंदर सभी है, कहा करो सभी आज भले बिराजे कृष्ण रूप से भविष्य लेकर के बिराजे हो, कितनी आपकी बढ़िया हुआ महाराज वाह ऐसे हो। अब पर मैं तो मस्त जो लू आप भरोस हुआ, हम तो राम जी के भक्त हैं, राम जी का रूप धारण करो। तो राम जी बन गए। तो उनके मन में कृष्ण से कमी नहीं थी, पूछा कि इस चीज सब अपने इष्ट को नमस्कार करते हो, तुम कृष्ण को नमस्कार करते हो, भक्त हो राम जी के इष्ट को नमस्कार करते हो। कहते हमारे राम जी हैं, तो कहते वो मूर्ति वर्ष बना श्री राम बन गए, राधे श्याम की मूर्ति बन गई, गुदड़ी में वो बन गए, गंगा बन गए गुदड़ी में, ये वो मंदिर है अभी राम जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान के राम जी बन गए। तो राम जी बन गए तो कृष्ण को नाथ कहा है, कहा करो सब वाह आज तो महाराज बड़ा रूप धारण किया है, बड़े विचित्र रूप धारण किया है आपने। तो सब आता हूँ ऐसे ये कथा आती है। कृष्ण भगवान के सामने एक राक्षस आया, उसको वरदान था कि वो हनुमान जी के बिना मरेगा नहीं किसी से, तो बड़ा उपद्रव किया। तो कृष्ण भगवान मारना चाहा तो मरे नहीं, तो कहा कि महाराज इसको वरदान है हनुमान जी के हाथ से स्वयं मरेगा नहीं है। हनुमान जी ने याद हनुमान जी को याद किया, हनुमान याद कर लिए आगे कहते हनुमान जी है कि महाराज ये नहीं होगा, मैं तो राम जी का भक्त हूँ, आप राम रूप हो आज्ञा दीजिए, कृष्ण की आज्ञा थोड़ी मानता हूँ, मैं तो राम जी की आज्ञा मानता हूँ, आप आज्ञा दो। तो भगवान राम बन करके हनुमान मार दूंगा सभी ठीक कर दूंगा। तो ये भक्त की निष्ठा है, परंतु हरे को जड़े गए तो राम जी का रूप धारण कर रहे, आप हो तो इस रूप से उस रूप से आओ, उस रूप से मैं तो आपको मानूंगा, अपना इष्ट होता है उसी रूप से मानते हैं। पति व्रताए हैं वो पति को परमात्मा का स्वरूप मानती है, तो पति को स्वरूप मानती है तो दूसरों को दूसरों व्यर्थ थोड़ी करती है, सबकी सेवा करती है, सास है ससुर है देवर है जेठ है देवरानी है जेठानी है ननद है सबकी सेवा करती है। सबकी सेवा करते हुए भी पति एक पति व्रत एक सबकी सेवा करेगी, पति के नाते उसके नाते सबकी सेवा करेगी, सबको सुख पहुंचाएगी, परंतु पति के नाते उसके संबंध से उसे माता पिता है तो पति के भी पूजनीय है, इस बार हमारे भी पूजनीय है, परंतु स्वतंत्र संबंध हमारा नहीं है, हमारा स्वतंत्र संबंध तो हमारे पति के साथ है। ऐसे अपना इष्ट है उसके साथ आप भाव रखो, परंतु दूसरों की निंदा मत करो, जो दूसरे मत की निंदा करता है हम वैष्णव है शिव जी को नहीं मानेंगे, वैष्णव लोग शिव जी को नमस्कार नहीं करते, वे अनन्य भक्त कहलाते हैं और शिव जी को नमस्कार नहीं करते। रामायण ने कहा राम जी का भक्त अगर शिव जी का निंदक हो, शिव जी का भक्त राम जी का निंदक हो, वो सपने में मेरे नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा रामायण में लिखा है। तो कभी नहीं करते, क्या बात है, शिव जी को नमस्कार क्यों नहीं करते? तो इसमें एक रहस्य की बात है, वैष्णव लोगों का तिलक होता है ना, वो उर्दू रंग होता है और भगवान शंकर के होते हैं उसको ये आड़ा होता है अभिपुण। तो ये त्रिपुण तीन लोग होता है, तीनों में होते भगवान शंकर है। वो क्यों करते हैं ऐसा कि उनके इष्ट है रामचंद्र जी, रामचंद्र जी महाराज के है धनुष, वो धनुषधारी है वो धनुष का चल रहे हो, और सेवा है वो करते हैं, और वैष्णव क्या करते हैं तीन करते हैं। तो विष्णु भगवान के इष्ट है शिव जी, शिव जी के है त्रिशूल, तो वैष्णव है वो त्रिशूल का चिन्ह है। जब तेरे हम भगवान विष्णु के भगत हैं और शंकर के त्रिशूल है, जब हम त्रिशूल का तिलक करते हैं, उस तिलक में वो जो सफेद सफेद रहते हैं गोपी चंदन से बीच में लग रहे हैं कुमकुम की श्री जो श्री जी कहते हैं, ये भगवान के चरण हैं दो और बीच में श्री जी है, तो वे भगवान शंकर को नमस्कार नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, वो बैर नहीं है, ये श्री जी है साक्षात लक्ष्मी जी है, ये श्री है वो। इस बात से भगवान जो लिंग स्वरूप से होते हैं वहां पर श्री जी को शर्म आवेगी, माता लक्ष्मी को, इस बात में नमस्कार भी करते, वहां जान कैसे करें, नग्न बैठे बाबा श्री जी हमारे वस्त्र पर, तो श्री जी कैसे जावे, इस बात नहीं करते। द्वेष नहीं है, लोग द्वेष बांध में आई हुई, इस बात से नहीं करते हैं। तो नहीं करने में भी महाराज श्री जी की भावना कितनी बढ़िया, उसी पर हमारे श्री जी विराजमान है, श्री लक्ष्मी जी हमारे विराजमान है, सीता माता विराजमान है, कितना बढ़िया भाव, तो ये भाव है। इस बात से भगवान शंकर में और विष्णु में भेद नहीं है, संप्रदाय के अनुसार नमस्कार करते हैं, तो संप्रदाय के अनुसार अपना चलना चाहिए, पर चलते हुए भी सीताराम सीताराम चित्त कीर्तन करते हो, और सुबह बोलो अल्लाह अकबर ऐसे बोल जोर से आम बांग लगाते हैं, तो बांग लगाने में हमें अल्लाह अकबर नहीं करना है, परंतु हमारे सीता जी को वहां अल्लाह अकबर कहते हैं, भाषा उनकी और की है हमारी सीताराम जी, तो वो सुनकर के आनंद आते हैं मन में, उनकी उपासना करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ईश्वर एक नाम, और जो वर्ण शंकर की उपासना शंकर है, जो वर्ण शंकर होता है माँ दूजे ही बन गई, बाप दूजे ही बन गया, तीजे ही पास भगवान शंकर, ऐसे उपासना शंकर है, भगवान को मिला दिया, इस्लाम को मिला दिया, हिंदू को मिला दिया, ये जो वर्ण शंकर उपासना है, पर कम भी मानना चाहिए। सीताराम कहने जो आनंद आता है वो इस्लाम में अल्लाह वहां ऐसे संत के करके आनंद आना चाहिए, हमारे सीताराम जी का ही नाम है, ये भगवान का ही नाम है, ऐसा आनंद आना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए किसी से भी कभी भी। अगर द्वेष करते हैं तो हमारे सीताराम जी छोटे हो जाते हैं, अल्लाह को मां में सीताराम जी हमारा नहीं है, तो सीताराम जी को हमने खुद नहीं छोटा कर लिया। तो ये दूसरे धर्म की निंदा काट साठ करते हैं तो अपने सिद्धांत को ही कमजोर मानते हैं, एक जैसे मानते हैं, उल्टा ही बात होती है, पर समझते नहीं। इस बात का सामने अद्वैतवादी है, द्वैतवादी हम तो भेदवादी की बात सही सुनते हैं, इससे कल्याण नहीं होता, और भेदवादी है वो अभेदवादी नहीं सुनते, मायावादी उनको तो कहते हैं भेदवादी, और वैष्णव कहते हैं मायावादी, अद्वैत सिद्धांत को मायावादी है, मायावादी माया में पड़े मन कर मायावादी, और मायावादी नहीं ब्रह्मवादी है, तो कैसे मायावादी बोलो, तो माया सिद्धांत हो सिद्धांत हो ब्रह्म है उनका, तो है तो ब्रह्मवादी, मन कहते मायावादी है। अगले भगवान के यह कहते हैं ये सगुण है, ये तो सत्य गुणमयी माया है, गुणमयी है सब राम और कृष्ण सब गुणमयी है, और परमात्मा तो निर्गुण है, त्रिगुणमयी गुण में ऐसा नहीं है, भगवान के गुण है वो दिव्य गुण है, सत्य रजतम ये प्रकृति के कार्य प्रकृति के गुण है, वो सौंदर्य औदार्य वैचित्र जो है भगवान में, वो सुंदरता है उदारता है और व्यापकता है, परम दयालुता है, परम सुरता है, सभी श्रेष्ठता है, ये गुण परमात्मा है, उस गुणों से वे गुण कहलाते हैं, सत्य रजतम से नहीं, कार्य करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन सत्व स्तंभ को लेकर के कार्य करने में, परंतु वो सगुण कोई गुणों के वशीभूत है, तो गुणमयी मान लेंगे, राम जी का रूप भी गुणमयी है, श्री कृष्ण का रूप भी गुणमयी है, इसकी निंदा कर देते हैं। दस अवतार इसकी माया मत करता कद पूजो, कहत कबीर सुनो भाई सो जो उपज खबर सो दूजो, जो अवतार निकल कर उपज खबर दूजो, आइए ये इसी माया है। संत मत में ये बात पर जो व्यापक ये कि भाई आप अपने इसका पूजन करो, प्रेम सबके साथ होना चाहिए, वृद्ध से वृद्ध धर्म वालों के साथ में प्रेम की अभिन्नता होनी चाहिए, प्रेम की ज्ञान की अभिन्नता, प्रेम सबके साथ हो। उपासना अपनी पद्धति से करो, पद्धति ये लाने की जरूरत नहीं है, पद्धति आप ही कमजोर नहीं है, इस बात दूसरी पद्धति लाओ, परंतु निंदा तिरस्कार दूसरे मतदा नहीं करना चाहिए। तो देव हो अद्वैत हो विश्वाद्वैत है शुद्धाद्वैत है द्वैताद्वैत है अत्यंत भेदा भले, ये पांच वैष्णवों में मुख्य मत है। तो पांचवें मत से परमात्मा के वर्णन हुआ, सही मत है भगवान शंकर को मानते, दक्षिण में जाए तो सुब्रमण्यम, वहां दक्षिण में है कार्तिकेय की उपासना है, शंकर की उपासना है और साथ में कार्तिकेय, कार्तिकेय को वहां सुब्रमण्यम कहते, सुब्रमण्यम बड़े बड़े मंदिर है भगवान के, शंकर जी सारा सदानंद के कार्तिकेय जी के, ऐसी बात है। तो वास्तव में वो एक ही परमात्मा है, अलग अलग नाम रूपम अलग अलग है, क्यों ऋषि नाम वे चित्याम को गम्यमसी पैसा मरना वही वह अनेक तरह मनुष्य है, तो उनकी उपासना भी अनेक तरह की, अनेक तरह की उपासना होने से ही हिंदू धर्म बड़ा मजबूत शेष है, जिसकी जैसी उपासना वैसे देवता क्रिया वैसे देवता और जिसने परमात्मा प्राप्ति हो जाए। जैसे भूख एक होती है और भोजन करने में तृप्ति एक होती है, दृष्टि एक नहीं होती, अलग अलग है, ऐसे इन उपासनाओं के रुचि नाम गई चिर्चिया, रुचि की विचित्रता होने से अलग अलग उपासना है, परंतु वे सब एक ही दिन पहुंचते हैं, जैसे नदियों का वेग चलता है सब जाकर समुद्र बनता है, ऐसे सब उपासनाएं अंत में परमात्मा में प्राप्त होते हैं। इस वास्ते अलग अलग रुचि के कारण से अलग अलग उपासना बताई गई है। जाहि को महेश गावत गणेश शेष पवन दिनेश रेश पार नहीं पावे है, बाली नव व्याकरण अगम अगाध्यागम निगम पुराण गावे, ज्ञानी घर ज्ञान गावे, ध्यानी घर ध्यान गावे, भक्तों के कार्य श्री कृष्ण मूर्ति कावे है, भावन अपार व्यक्ति लोक के आधार जाको बार बार जोर करी शीर्ष को नवावे है। यम श्रीवासों पास देवे दिवे दान दिनो बहुधा बुद्धि प्रमाण करते भैया का अर्न मित्र जय दशा सरता कन्दे मान सदा सोजन लोग बलम थे लोग सदा सो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग करना पे, पर है वो एक एक ही परमात्मा अलग रूप से, तो अनेक रूप से होते हुए ये गए। इस बात से किसी उपासक की दृढ़ना मत करो, ये जो कहते हैं निराकार है साकार की दृढ़ना करने से साकार की उपासना करने वाले चित्त में धक्का लगेगा, उनकी साकार छूटेगी, इसका पाप लगेगा दृढ़ना करने वालों को। हम बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, अनन्य भाव से निराकार की भाव करते हैं, निराकार ही सत्य है, साकार सत्य नहीं है, बिल्कुल दुर्भावना है। और एक बात बताऊं बाद में, आपको अद्वैत अच्छा लगता है तो द्वैत की उपासना मत करो, पर निंदा कभी मत करो, कभी भूल गए भी द्वैत की निंदा मत करो। अगर द्वैत उपासना अच्छी लगी है तो द्वैत उपासना करो, पर अद्वैत की निंदा कभी भूल भी मत करो, क्यों आपके इष्ट देव कम हो जाएंगे। वो समझते थे हम उसकी इष्ट करते हैं, पर उस इष्ट देव से आपका इष्ट वहां नहीं है, तुम निंदा करते हो, आपका इष्ट हो तो कैसे निंदा करते। इस बात से ये पक्ष बहुत पसंद करने वाला है, उपासना करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अब वाह कहा सभी आज की, आज तो सभी विलक्षण सीताराम 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 थे, राधे श्याम बन गए, हाल तो सभी विलक्षण राम हो आप नाथ भले बिराजे नाथ मालूम हुआ। एक बार गरुड़ जी को विचार आया कि मैं बहुत तेज चलता हूं, भगवान का भक्त हूं, तो कृष्ण भगवान से भगवान ने कहा गरुड़ हनुमान हनुमान को बुला लाओ। तो गरुड़ जी गए कहते महाराज भगवान ने आप राग को बुलाया है, आ जाएंगे अच्छी बात तुम चलो। गरुड़ जी कहते तुम चलो आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे, तो हम कहते हम आ जाएंगे आप निमंत्रण मिला बहुत अच्छी बात। ऐसे किया तो पांचवे ठेठ कृष्ण भगवान पांच छे पांचवे हनुमान जी महाराज पहले, तो गरुड़ जी वहां जाकर के पैरा लगाने लगे तो वे द्रौपदी जी पर मिले, तो गरुड़ जी वहां के परिकोण खूब पसारा लाभ चले गए। मानो हनुमान जी महाराज थे तो गरुड़ जी से भी तेज है, इनका गरुड़ जी से भी। तो गरुड़ जी को बुलाने के लिए गए हनुमान जी को बुलाने के लिए गरुड़ जी गए तो हनुमान जी ने कहा तुम चलो मैं आता हूँ अभी आ जाऊंगा। तो गरुड़ जी विचार किया कि आ जाऊंगा कब आएंगे बुलाए, मैं तो चला जाऊंगा अभी। तो वे पहुंच गए हनुमान जी पहले, गरुड़ जी पीछे पहुंचे, हनुमान जी पहले पहुंच गए। पीछे आया तो गरुड़ जी आकर क्या बोले बना देता हूं, तो पछाड़ा जोर से और भगवान के पास गए। सत्यभामा जी के मन में सुंदरता का अभिमान बहुत था, आठवीं पटराणियों में सत्यभामा के मन में था मैं बड़ी सुंदर हूं अति सुंदर हूं। तो कृष्ण भगवान बिराजे थे पास में, सत्यभामा जी बिराजे थे, जाकर कृष्ण भगवान का कहा आप तो बड़े सुंदर है, राम रूप को राम रूप से देखते हैं कि महाराज आप ऐसे ये पास में ये बद्दी मूर्ति ये कौन बैठी है, ये पास में कौन बैठी है ऐसी बद्दी मूर्ति, माँ कहाँ गई हमारी माँ, हमारी माँ माँ कहाँ गई। प्रतिमा जी का गर्व श्रोण हो गया, ये ऐसी बद्दी रूप आई हमारी माँ के जगह कौन बैठी है यहाँ करके। तो माँ सीता ऐसे लगती है सीता शादी हो जाए, महाराज सीता का इतना स्नेह हनुमान जी पर और हनुमान जी का सीता पर बहुत स्नेह, बड़ा प्रिय स्नेह था। ताकि हनुमान जी मिले ऋषिमुख पर्वत पर तो सब बात कही, अगर शुद्ध पितु माँ तो भरोसे बड़े ऐसे उतरे प्रभु पोसे, सब बात शुद्ध पितु माँ तो भरोसे कहा, सब बातें कही, पर राम जी ने बेटा नहीं कहा हनुमान जी को। और जब ये गए सीता माता के पास, सीता ने अरे हमारे गुरु निधि शुद्ध हो करे वो सदा है रघुनायक, फिर नाचने के कूदने लगे, आश्चर्य आश्चर्य बड़ी अच्छी है। पीछे आया तब राम जी ने कहा बेटा अब बेटा पहले बना ले तो माँ बिना पालन करे कौन, बाबा जी के पास है माँ तो पालन करी स्वीकार जब स्वीकार करेगा तो हनुमान जी को राम जी का नाम बेटा बेटा। तो सीता माता वहां गए तो भेद हुआ देखा माता से मिले, पहले भिक्षु बैठे माता सुनाई पे मिले मंदिर का डाली गए रावण आया वो सुना गया माँ के सामने हाजिर हो गया छोटा सा लगता जी ये मंत्र है माँ तो ये सेनानी मैं लाया हूँ राम जी की सेनानी मुंदी का मैं लाया हूँ माँ तो मैं आनी सुने और मैं लाया हूँ। अच्छा साहेब बंदर से रवनिया राम जी का दूत हूँ करुणा विधान की सत्य सफर गए, तो करुणा विधान ये पद राम जी के पद में सीता जी का है, सीता जी करुण विधान ऐसे करो करुणा विधान ऐसे करो, आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपणश्चित श्रेयस्थ कामो नगरिया ज्येष्ठा पत्य कालो, अपना नाम अपने गुरु का नाम और अत्यंत कृपण का नाम और बड़े लड़के का नाम और अपनी स्त्री का नाम, ये नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। सास सुनते जो कल्याण चाहता है उनको नहीं चाहिए। आत्म नाम गुरु नाम नामा कृपण से श्रेष्ठ काम जो कल्याण चाहता है जैसा पत्य कलर्त यो हो। तो स्त्री के लिए तो गुरु है, पति को गुरु स्त्री नाम, तो स्त्री को पति का नाम मिलना चाहिए, पति को अपनी स्त्री का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसा निषेध आता है जो कल्याण चाहता है उनको। तो ऐसा कायदा है, तो जब नाम नहीं जाना पाए रघुनाथ जी महाराज किस नाम से पुकारे, सीता जी बोले बात कर रहा हूं क्या करे। तो ये सती ने जब पार्वती ने वरदान दिया है मन राम जा इलाचो मिले सोबर करुणा निधान सुजान शीर सुने तो रावण और करुणा निधान पद मां से पूरा सीता जी ने जब पार्वती ने कहा कि तुम्हारो वही बल मिलेगा वे करुणा निधान, तो सीता जी करुणा निधान से बोलती थी करुणा निधान ऐसे करो करुणा निधान ऐसे आओ करुणा निधान। तो इस नाम का पता था तो हनुमान जी का सत्य शपथ करुणा निधान के तब हे भगवान का दास है ये तो हमारी प्राइवेट की बात पूछती सकता, ये तो प्राइवेट की बात है। करुणा निधान सीता जी कहती थी भगवान का सत्य शपथ करुणा निधान के ठाकुर कहते मैं दास हूँ मातु जानी थी तो भाई विश्वास हो गया तब से बातें कही। अब बातें तो कही मंत्र हनुमान ने देखा बगीचा और बगीचे में लगे हुए फल बढ़िया बढ़िया देखे और बंदर ठहरे फल के तो प्रेमी ही ठहरे कि माँ भूख लगी अरे माँ के सामने जाते छोड़े भूख लग जा माँ है तो मन मारे बेटा कुछ खा रहे कुछ खा रहे तू बनवास जाने लगे तो कोश लिया बलराम जी गए तो कोश लिया माँ पर बोली कि स्नान करो जल निकल बेटा देरी आज निकलेगी सवारी बहुत देरी हो दूर हो जाएगी तो तुम कुछ मीठा खा लो। फिर क्या मेरे बड़ा जी मिल गया तो माँ मिली तो भूख ला गई हनुमान जी को दूध तो माँ के दर्शनों के लिए गए थे अब माँ के दर्शन हो गए तो माँ मैं फल खा लू छिड़क गया ये माए जलाशय से ऐसे बैठे हैं जो एक ग्रास एक तो छोटा सा है ना एक ग्रास जाने चला जा ये सब ना बेटा ये चुप लेना जाने तब से बोले तनकर भय माता मोहिना है माँ उनका भय मेरे को नहीं है तुम आप खुश हो जाओ तो खुश हो माँ के कारण से माँ के तो बच्चा जीवन तो खुश हो जाए माँ तो राजी होगी। इस बात उनको भय नहीं है मेरे का तुम सुख मान रहे मैं तो सुख मानती हूँ खाओ खाओ राम जी का नाम लेकर जाना बगीचे में खाओ तो फल खाओ तो अर्थात मधुर फल खाओ मीठे मीठे फल खाना छोटे का कंठ खराब हो जाए इस बात से मीठे मीठे फल खाना। अब माँ की आज्ञा हो गई अब कुछ दे फल आ गए क्या करो समय हो गया सुनाई गया बंदर बंको रे बंदर बंको सुना दे भाई बड़ा मीठा पाल है।